इकत्रा ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश इकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर।
हाँ, रिचर्ड डॉकिंस की द मैजिक ऑफ रियलिटी।
बिल्कुल। और ये किताब ना एक ऐसा सवाल उठाती है जो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत जरूरी है।
कौन सा सवाल?
यही कि भाई असली जादू कहाँ है। मतलब आजकल इतनी जानकारी है, गलत जानकारी भी है, तो सवाल उठता है आश्चर्य कहाँ खोजें, पुरानी कहानियों में, मिथकों में,
हाँ
या तथाकथित चमत्कारों में,
एग्जैक्टली, या फिर उस दुनिया में जिसे विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है।
और डॉकिंस का तर्क यही है ना,
हाँ,
कि विज्ञान जो सच दिखाता है वो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत, ज्यादा जादुई है।
हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं सच जानने से रहस्य खत्म नहीं होता, बल्कि वो और गहरा और खूबसूरत बन जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो चलिए आज इसी आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं।
हाँ, पर शुरू करने से पहले शायद रिचर्ड डॉकिंस के बारे में थोड़ी बात कर लें। वो है कौन?
जरूर। वो सिर्फ लेखक तो है नहीं, एक बहुत जाने माने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं।
और साइंस कम्युनिकेटर भी। मतलब विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का उनका काम कमाल कर रहा है।
हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस भी थे। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
सही बात है, उनका काम सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहा।
और उनकी किताब द सेल्फिश जीन, उसने तो सोचने का तरीका ही बदल दिया था विकासवाद पर।
बिल्कुल। और द गॉड डिल्यूजन ने भी काफी लहरें उठाई थीं।
हाँ वो तो थी ही, लेकिन ये किताब द मैजिक ऑफ रियलिटी, ये थोड़ी अलग लगती है।
हाँ, इसमें उनका जोर खंडन पर उतना नहीं है जितना विज्ञान में जो छिपा हुआ आश्चर्य है उसे दिखाने पर है।
अच्छा, मतलब वो पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं।
हाँ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, वैज्ञानिक समझ से दुनिया कितनी ज्यादा विस्मयकारी लगती है।
और उनमें वो काबिलियत भी है ना, गहरी वैज्ञानिक समझ को आसान भाषा में बताना।
बिल्कुल। वो अक्सर स्यूडो साइंस, मतलब झूठे वैज्ञानिक दावों को चैलेंज करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देते हैं, सबूतों पर आधारित सोच।
और इस किताब में वो बात झलकती है, उनका अपना आश्चर्य।
हाँ, साफ तौर पर प्रकृति को लेकर उनका जो अपना एक गहरा लगाव है वो दिखता है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि पुरानी कहानियां गलत हैं, बल्कि ये कि वैज्ञानिक व्याख्याएं उनसे कहीं ज्यादा सैटिस्फाइंग है और शानदार भी।
और ये किताब सिर्फ बड़ों के लिए है या?
लिखी तो युवा पाठकों को ध्यान में रखकर गई है, पर मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जिसके मन में जिज्ञासा है, किसी भी उम्र का हो।
ठीक है, तो फिर इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य विचार?
ज्ञान के जरिए हम जिस असली दुनिया को जानते हैं वो किसी भी काल्पनिक कहानी, मिथक या सुपरनैचुरल दावे से कहीं ज्यादा मैजिकल है, ज्यादा सुंदर है।
तो वो जादू शब्द को ही रिडिफाइन कर रहे हैं एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं वो अलौकिक जादू या स्टेज मैजिक की बात नहीं कर रहे हैं।
हाथ की सफाई वाला?
हाँ, वो बात कर रहे हैं उस विस्मय की, उस आश्चर्य की जो चीजों के काम करने का तरीका समझने से आता है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे ये जानना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या जीवन कैसे विकसित हुआ, ये समझ ही अपने आप में जादू है।
और किताब हमें कई बड़े सवालों पर ले जाती है ना?
हाँ बिल्कुल। जैसे असलियत क्या है, हम सच कैसे जानते हैं, जीवन की शुरुआत कैसे हुई,
दुनिया में इतनी अलग अलग तरह के जीव क्यों हैं, बुरी चीजें क्यों होती हैं।
हाँ, और रात दिन क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब बड़े सवाल हैं।
हर सवाल पर डॉकिंस का अप्रोच क्या रहता है?
वो अक्सर पहले उस सवाल से जुड़ी जो पुरानी कहानियां या मिथक हैं उनका जिक्र करते हैं।
अच्छा, जैसे अलग अलग कल्चर्स में जो प्रचलित हैं।
हाँ, दिखाते हैं कि कैसे इंसानों ने हमेशा इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। ये उनकी पहली कोशिशें थी दुनिया को समझने की।
लेकिन फिर वो विज्ञान पर आते हैं।
एग्जैक्टली। फिर वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं, सबूतों के साथ, तर्कों के साथ, और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक जवाब न सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद है
बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग।
हाँ, ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले, ज्यादा आश्चर्यजनक।
और किताब कई फील्ड्स को टच करती है, कॉस्मोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री।
और उसमें डेव मैककीन के इलस्ट्रेशंस भी हैं ना।
वो कमाल के हैं।
आह,
वो मिथकों की जो फैंटेसी वाली दुनिया है और विज्ञान की जो स्ट्रक्चर्ड सुंदरता है, दोनों को साथ साथ दिखाते हैं
बहुत खूबसूरती से।
तो चलो कुछ मेन चैप्टर्स और उनके सवालों में थोड़ा और गहरे चलते हैं। पहला ही सवाल था वास्तविकता क्या है, जादू क्या है।
हाँ, यहीं से वो शुरुआत करते हैं, अपनी जमीन तैयार करते हैं।
और वो तीन तरह के जादू बताते हैं, है ना?
हाँ, पहला सुपरनेचुरल जादू, परियों की कहानियों वाला, जिसे वो खारिज करते हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा स्टेज मैजिक, जादूगर वाला, हाथ की सफाई, मनोरंजक है पर असली नहीं।
और तीसरा जो उनके लिए जरूरी है?
वो है वास्तविकता का जादू, यानी वो सेंस ऑफ वंडर, वो विस्मय जो हमें दुनिया के काम करने का तरीका समझने पर महसूस होता है।
और इसे समझने का तरीका?
वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, ध्यान से देखो, सवाल पूछो, परिकल्पना बनाओ, उसे टेस्ट करो, सबूत इकट्ठा करो, ये बेस्ट तरीका है सच जानने का, हम सबके लिए।
ठीक है, फिर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं, पहला इंसान कौन था? आदम और हव्वा या मनु जैसी कहानियां तो हैं।
हाँ, जो किसी फर्स्ट कपल की बात करती हैं, लेकिन विज्ञान कहता है क्रमिक विकास हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन।
मतलब कोई एक पहला इंसान नहीं था?
नहीं, एकदम वैसे नहीं, जैसे कोई एक पहली सुबह नहीं होते, ये एक बहुत धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
उन्होंने वो सोचने वाला एक्सपेरिमेंट भी दिया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाने वाला।
हाँ, सोचिए अपनी माँ, नानी, परनानी और लाखों साल पीछे चलते जाइए, हर पीढ़ी पिछली से बस थोड़ी सी अलग होगी।
लेकिन लाखों साल बाद?
लाखों साल बाद हमारे पूर्वज शायद मछली जैसे दिखते थे, मतलब इंसान धीरे धीरे बदला है, कोई एक शार्प पॉइंट नहीं था कि अब इंसान बन गया।
वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल है, इतने अलग अलग तरह के जानवर क्यों हैं, मतलब इतनी विविधता?
इसका जवाब वो देते हैं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन।
वो कुत्तों वाला उदाहरण भी देते हैं शायद।
हाँ, पहले वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन समझाते हैं, कैसे इंसानों ने जंगली भेड़ियों से अपनी पसंद की ब्रीड्स बना ली चुन चुन कर।
लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड।
हाँ, प्रकृति भी कुछ ऐसा ही करती है, पर बिना किसी इरादे के।
कैसे?
देखिए, किसी भी पॉपुलेशन में थोड़ी भिन्नता होती है, वेरिएशन। अब जो जीव अपने माहौल में थोड़े बेहतर फिट होते हैं,
जैसे
तेज दौड़ने वाला हिरन या बेहतर तरीके से छिप जाने वाला कीड़ा, उनके बचने और बच्चे पैदा करने के चांस ज्यादा होते हैं।
अच्छा।
और वो अपने वो फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं, लाखों साल तक यही चलता रहता है।
और नतीजा?
नतीजा है धरती पर जीवन की ये अद्भुत बायोडाइवर्सिटी। ये कोई प्लान्ड प्रोसेस नहीं है, बस माहौल के हिसाब से ढलने का नतीजा है।
कमाल है। और ये सब चीजें, पत्थर, पानी, हवा, हम खुद, ये बनी किस चीज से?
पुराने जमाने में तो वो चार पांच तत्व मानते थे।
हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
लेकिन विज्ञान हमें ले जाता है एटम्स की दुनिया में, परमाणुओं की दुनिया में।
हर चीज परमाणुओं से बनी है?
हाँ, हर चीज, ठोस, तरल, गैस, सब कुछ बेहद छोटे कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
और परमाणु भी और छोटे कणों से बने हैं?
बिल्कुल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अलग अलग तरह के परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, मॉलिक्यूल्स।
जैसे पानी का H2O।
एग्जैक्टली, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। और सोचिए, दुनिया की इतनी सारी अलग अलग चीजें बस इन्हीं कुछ मुट्ठी भर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है।
है तो। अच्छा, रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं, दिन और रात, मौसम, सूरज। मिथकों में तो बड़े ड्रामेटिक जवाब होते हैं इनके।
हाँ, जैसे सूर्य देवता का रथ, पर वैज्ञानिक जवाब ज्यादा सटीक और दिलचस्प है। दिन रात क्यों होते हैं?
क्योंकि पृथ्वी घूम रही है।
हाँ, अपनी धुरी पर करीब 24 घंटे में एक चक्कर, जब हमारा हिस्सा सूरज की तरफ तो दिन, जब दूसरी तरफ तो रात। सिंपल।
और मौसम, सर्दी गर्मी?
उसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना, करीब 23.5 डिग्री।
अच्छा।
हाँ, और साथ में उसका सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है तो वहां गर्मी, सदन में सर्दी, और फिर उल्टा।
तो ये झुकाव भी वजह है?
हाँ, ये झुकाव और ऑर्बिट बड़ी सरल सी ज्योमेट्री है, पर देखो इसके नतीजे कितने जबरदस्त हैं।
और सूरज, वो क्या है असल में?
सूरज एक तारा है, स्टार, गैस का एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला।
आग का गोला? नहीं
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उसके सेंटर में इतना प्रेशर और टेम्परेचर है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है।
न्यूक्लियर फ्यूजन?
हाँ, हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में निकलती है जबरदस्त एनर्जी, वही रोशनी और गर्मी हम तक पहुंचती है।
और वो स्टार स्टफ वाली बात?
हाँ, कमाल की बात यह है कि हमारे शरीर में जो ज्यादातर भारी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वो सब इन्हीं तारों के अंदर बने थे।
सच में?
हाँ, और फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बिखर कर स्पेस में फैले और उनसे ही ग्रह और हम बने, तो हम सचमुच तारों की धूल हैं, स्टार स्टफ।
ये सोचना ही वाह। अच्छा, अब वो सबसे बड़ा सवाल, सब कुछ कब और कैसे शुरू हुआ? बिग बैंग?
हाँ, विज्ञान बिग बैंग थ्योरी पेश करता है। हर कल्चर में अपनी क्रिएशन स्टोरी है, पर विज्ञान सबूतों पर आधारित बात करता है।
बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, है ना?
नहीं, वो एक एक्सपेंशन था, विस्तार। करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और डेंस स्टेट से फैलना शुरू हुआ।
और इसके सबूत हैं?
हाँ, कई मजबूत सबूत हैं। जैसे एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन।
वो क्या है?
वो उस शुरुआती दौर की बची हुई हल्की गर्मी है जो आज भी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, एक तरह की गूंज। ये दिखाता है कि विज्ञान इतने फंडामेंटल सवालों के भी जवाब दे सकता है।
ठीक है, पर दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजें तो नहीं है, बुरी चीजें क्यों होती हैं? भूकंप, बीमारियां, लोग इन्हें अक्सर किसी नाराज भगवान या कर्मों से जोड़ते हैं।
डॉकिंस इस नजरिए को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये घटनाएं पर्सनल नहीं है, मतलब वो किसी के खिलाफ नहीं होती।
तो फिर क्यों होती
है? वो यूनिवर्स के जो अव्यक्तिक भौतिक नियम है, इम्पर्सनल फिजिकल लॉज, उनका नतीजा है। भूकंप आता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, उनमें स्ट्रेस बनता है।
किसी के पापों की वजह से नहीं?
नहीं, बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया जैसे जीवों की वजह से होती हैं, जो बस अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रहे हैं। प्रकृति अच्छी या बुरी नहीं है, वो बस नियमों से चलती है।
तो इसका मतलब हमें डरने या दोष देने के बजाय कारण समझना चाहिए।
बिल्कुल, कारण समझने से ही हम उनसे निपट सकते हैं, बचाव के तरीके निकाल सकते हैं, इलाज ढूंढ सकते हैं। ये ज्यादा रैशनल और एम्पैथेटिक अप्रोच है।
सही बात है। और आखिरी सवाल था, चमत्कार क्या है? मिरेकल्स?
डॉकिंस के हिसाब से चमत्कार की परिभाषा ही है प्रकृति के नियमों का टूटना,
वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉज।
और क्या ऐसा होता है?
आज तक ऐसा कोई भी वेरिफाइड रिलायबल केस नहीं मिला है। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं वो अक्सर या तो
क्या,
या तो कोइंसिडेंस होता है, संयोग। प्रोबेबिलिटी थ्योरी बताती है कि बहुत रेयर इवेंट्स भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो सकते हैं।
अच्छा।
और या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी, या फिर जानबूझकर किया गया फ्रॉड, धोखा।
तो डॉकिंस मानते हैं कि चमत्कारों की जरूरत नहीं है।
हाँ, उनका तर्क है कि असली दुनिया जिसे विज्ञान समझाता है वो अपने आप में इतनी अद्भुत है, इतनी विस्मयकारी है कि हमें सुपरनेचुरल चमत्कारों की कहानियों की जरूरत ही नहीं है।
तो इस पूरे बातचीत से जो बड़े टेकअवेज हैं, जो मुख्य संदेश हैं, वो क्या होंगे?
पहला और सबसे बड़ा तो यही, वैज्ञानिक वास्तविकता का जो आश्चर्य है,
द वंडर ऑफ साइंटिफिक रियलिटी,
कि विज्ञान चीजों को बोरिंग नहीं बनाता बल्कि
उनकी सुंदरता और कॉम्प्लेक्सिटी को और उभारता है। इंद्रधनुष का विज्ञान जानने से वो कम खूबसूरत नहीं लगता, ज्यादा लगता है।
सही। जैसे भारत में हम मानसून देखते हैं, उसका विज्ञान समझना उस अनुभव को और रिच बना सकता है।
बिल्कुल।
दूसरा बड़ा संदेश है वैज्ञानिक विधि का महत्व, साइंटिफिक मेथड,
सबूत मांगना, तर्क करना।
हाँ, और अपने आइडियाज को टेस्ट करना। ये सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में फेक न्यूज से बचने में, सही फैसले लेने में मदद करता है।
खासकर आज के दौर में तो ये बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा।
तीसरा, सभी जीवों का आपसी जुड़ाव। इवोल्यूशन हमें सिखाता है कि हम सब एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं।
इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कनेक्टेड है।
हाँ, ये हमें प्रकृति के प्रति ज्यादा विनम्र बनाता है, ज्यादा जिम्मेदार। खासकर इंडिया जैसी बायोडाइवर्सिटी वाली जगह पर यह सोच बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और चौथा पॉइंट,
ब्रह्मांड की अव्यक्तिक प्रकृति को समझना, इम्पर्सनल नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ये मानना कि प्राकृतिक घटनाएं हमारे लिए या हमारे खिलाफ नहीं हो रही,
वो बस हो रही हैं नियमों के अनुसार।
हाँ, इससे डर और अंधविश्वास कम होता है। अगर बाढ़ आती है तो वो प्रकृति का गुस्सा नहीं है, वो भारी बारिश और नदी के बहाव का नतीजा है।
और ये समझ हमें प्रॉब्लम के असली सोल्यूशन खोजने में मदद करती है।
एग्जैक्टली।
किताब में कुछ कोट्स भी थे जो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, कई हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद आया, वास्तविकता का जादू ना तो अलौकिक है और ना ही कोई चाल, बल्कि सीधे शब्दों में अद्भुत है। अद्भुत और वास्तविक। अद्भुत क्योंकि वास्तविक।
ये तो पूरी किताब का निचोड़ है एक तरह से,
है ना। और एक और है, हम मरने वाले भाग्यशाली लोग हैं क्योंकि हमें पहली बार में जन्म लेने का मौका मिला।
ये हमारे अस्तित्व की कीमत बताता है कि जिंदा होना ही कितना बड़ा प्रिविलेज है।
बिल्कुल। और ये बारा भी बहुत खूबसूरत है, विज्ञान वास्तविकता की कविता है।
मतलब विज्ञान सूखा नहीं है, उसमें भी पोएट्री है।
हाँ, वो दुनिया की सुंदरता को अपने तरीके से बयां करता है।
और एक और जो उनके मेन आर्गुमेंट को दोहराता है,
सच्चाई किसी भी मिथक या गढ़ी हुई रहस्य या चमत्कार से कहीं ज्यादा जादुई है। विज्ञान का अपना जादू है वास्तविकता का जादू।
तो ये सब बातें सुनने में तो अच्छी हैं, पर इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
सबसे पहला तो वही क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ।
आलोचनात्मक सोच,
मतलब हर चीज पर सवाल उठाना।
सवाल उठाना और सबूत मांगना। कोई खबर आई, कोई दावा सुना, रुक कर सोचें, क्या ये सच है, कहां से आया, कोई और वजह हो सकती है।
जैसे कोई हेल्थ टिप आई व्हाट्सएप पर।
हाँ, तो चेक करें उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है या नहीं। ये आदत हमें बेवकूफ बनने से बचाती है।
और दूसरा?
दूसरा, प्रकृति के प्रति गहरी क्यूरियोसिटी और एप्रिसिएशन।
मतलब
अगली बार जब आप तारे देखें या बारिश होते देखें तो सिर्फ वाह कहकर ना रह जाएं, सोचें ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है,
ये जिज्ञासा जगाना।
हाँ, इससे हम अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, शायद पर्यावरण के लिए ज्यादा केयरिंग भी बनते हैं।
ये भी जरूरी है। तीसरा?
तीसरा, बेहतर साइंटिफिक लिटरेसी, वैज्ञानिक साक्षरता।
क्यों जरूरी है ये आम आदमी के लिए?
अरे, आज क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन, AI, ये सब मुद्दे हमारी जिंदगी तय कर रहे हैं। इनके बारे में बेसिक समझ होगी तभी तो हम सही फैसले ले पाएंगे एक समाज के तौर पर।
बात तो सही है। और?
और हाँ, ये किताब जिज्ञासा को बढ़ावा देती है, क्यों और कैसे पूछने की हिम्मत देती है,
जो बच्चों में तो होती है पर हम बड़े होते होते खो देते हैं शायद।
बिल्कुल, उस जिज्ञासा को जिंदा रखना जरूरी है। दुनिया को एक पहेली की तरह देखना जिसके जवाब खोजे जा सकते हैं, इससे जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है।
तो आखिर में इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, आपके लिए क्या है?
मेरे लिए तो यही कि सच जानना डरावना नहीं बल्कि एक्साइटिंग है, विस्मयकारी है, और विज्ञान हमें उस सच तक ले जाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। विज्ञान और आश्चर्य दुश्मन नहीं, दोस्त हैं।
और मेरे लिए ये कि वैज्ञानिक सोच सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये एक टूल है, एक तरीका है सोचने का, जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया को बेहतर समझने के लिए और गलत जानकारी से बचने के लिए।
ये किताब हमें रियलिटी से प्यार करना सिखाती है।
हाँ, उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर के साथ।
बिल्कुल।
शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये हो सकती है कि अगर आज हम विज्ञान की मदद से इतने रहस्य समझ पाए हैं तो आगे और कितना कुछ जानना बाकी होगा।
सही बात है, खोज तो कभी खत्म नहीं होती।
एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।